ओम शांति। आज हम सब के बीच इस बाबा के यज्ञ के आदि रतन, जिनको बाबा आदि रतन कहते हैं, हमारी अति प्रिय, हमारी अति आदरणीय, मैं कहूंगी दादी जी, दादी रुक्मणी जी, जो आदि समय से बाबा के यज्ञ में सेवा पर और अभी तक दादी जी जो हैं सेवा कर रही हैं, तो शुरू से लेकर जो रतन बाबा के संग संग रहकर बहुत कुछ यज्ञ को देखा, कैसे यज्ञ यहाँ तक पहुंचा, वो सब देखा दादी ने। क्योंकि हम सब में से कई भाई बहने बहुत लेट आए, लेकिन हम फिर भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो आज भी हमें इन आदि रत्नों की पालना मिल रही है, इनके अंग संग रहने का मौका मिल रहा है, इनसे हमें ज्ञान रतन मिल रहे हैं। तो हम सभी हमारी आदरणीय दादी जी का बहुत जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। दादी जी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, है ना? दादी जी को सब जानते हैं, दादी रुक्मणी जी को सब जानते हैं। कौन कौन जानता है दादी जी को? आप तो सब दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले तो दादी जी को जानते ही हैं, क्योंकि दादी जी तो दिल्ली जोन भी चलाती हैं, रजौरी गार्डन सेंटर पे होती हैं और दिल्ली वालों से तो मिलती ही रहती हैं। तो आज हम सबके अंदर कई प्रश्न होते हैं कि ये यज्ञ जो बाबा कहता है ये यज्ञ है, कभी बाबा कहता है ये एक यूनिवर्सिटी है, कभी बाबा कुछ कहता है, लेकिन ये यज्ञ का इतिहास क्या है? किस तरह से यज्ञ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने थ्रू ब्रह्मा बाबा शुरू करा, और ये दादियों का ग्रुप जो 400 का ग्रुप था वो जुड़ा, और कैसे करते करते उस यज्ञ को दादियां शिव बाबा की साथी बन, राइट हैंड बन यहाँ तक लेकर आई, और आज देखो इसका विस्तार कितना बड़ा हो गया। तो हम सबके अंदर प्रश्न है कि इनकी त्याग और तपस्या कितनी रही होगी जो आज ये यज्ञ यहाँ तक पहुंचा। आपके सामने क्या क्या परीक्षाएं आई, क्या क्या विघ्न आए, लेकिन उन सब विघ्नों को पार कर एक बल, एक भरोसा बन कैसे ये बाबा का यज्ञ आज इतना विशाल रूप बन गया। तो हम सब आज दादी जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, साथ ही साथ बाबा के दो रतन, बाबा हमेशा कहते हैं एक रतन है आदि रतन, जो यज्ञ के आदि रतन है, और दूसरे जब 14 साल के बाद यज्ञ भारत में आया और उसके बाद सेवा स्थान शुरू हुए, तो आदि सेवा रतन जिन्होंने जब यज्ञ सेवा के रूप बना, तो उस समय कैसे सेवा को बढ़ाया, कैसे सेवाएं शुरू हुई, तो उनके भी आदि रतन हमारी आदरणीय गीता दीदी जी भी हम सबके बीच में हैं, तो उन्होंने भी बहुत बाबा की आदि से सेवा करी है और अभी तक कर रही हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं दादी जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि दादी जी आप तो शुरू से बाबा के अंग संग रही हैं, और बाबा ने हमेशा इसको यज्ञ कहा, बाबा मुरलियों में भी, साकार मुरलियों में भी बाबा हमेशा कहता था बच्चे ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, फिर कभी बाबा कहता था बच्चे ये तो यूनिवर्सिटी है। तो दादी जी यज्ञ क्या, यूनिवर्सिटी क्या, बाबा ये बार बार जो मुरली में कहता था, तो बाबा का उसके पीछे क्या राज था, क्या भाव था, वो दादी जी हमें क्लियर करिए।
ओम शांति। हमने देखा बाबा ने यज्ञ नाम में संदेह किया, यज्ञ में स्वाहा होना होता है, आहुति देनी होती है, तो बाबा ने शुरू शुरू में जैसे ही थोड़ा भी ज्ञान का धारणा बाबा के अंदर आया, वैसे तो आपको मालूम है ये रतन जो हमारा साकार बाबा पिता पिता ब्रह्मा है, वो एक ऐसी आत्मा है जो आज से लेकर अंत तक
अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, देख रही हूँ। जब आपने सवाल पूछा है जिस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा ने अपने एक ही जीवन में चारों ही आश्रमों का अनुभव कर लिया, बालावस्था का, फिर युवा, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, सब आश्रम देख लिया और आत्मा के अंदर चारों ही युगों का, जिसके अंदर ज्ञान के संस्कार बर्बाद करके करके चक्कर के अंत में आके पहुंचा, तब उनके अंदर में पहले पहले शुरू में अपने आप जैसे ज्ञान उज्ज्वल हो गया और उन्होंने शुरू शुरू में दोहे बनाए थे। दोहे इतने अच्छे थे, हमारे पास इधर कॉपी होगी परंतु कहाँ अभी है, किसके हवाले है, वो पुराना लिटरेचर और सारा रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है। मेरे पास भी वो काफी होती थी, परंतु मेरे सारा सामान आद से उस समय तक का सब हाजिर था, परंतु मैं जब रांची से निकल करके और जगह गई तो मेरा उसमें सारा सामान चूहों ने खा लिया, खत्म कर दिया। तो उस यज्ञ जो बाबा ने दोहे बनाए न, कल्प 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 कर्म क्षेत्र पर होती धर्म गिलानी, जबी यज्ञ सहित प्रजापिता ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है तभी। और सारा जो समय हम अभी देख रहे हैं उस समय का उन दोहे में वर्णन था। तो ये वर्णन करने से साथ साथ बाबा ने क्या किया, जो अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया। उन दिनों में इतनी बहने नहीं थी, सिर्फ 5 बहने थी जो बाबा को संपूर्ण उसी टाइम अच्छी लगी, उनके वो ही उन्होंने 5 ये बहनों को निमित्त बना करके और अपना सारा सब कुछ समर्पित कर दिया, स्वाहा विल कर दिया। तो विल करने के कारण इसका नाम पड़ गया यज्ञ। तो यज्ञ तब से लेकर कहा गया ओ मंडली जरूर कहते थे, परंतु ये यज्ञ है, उसमें हम सबको अपना सब कुछ स्वाहा करना है। वो बाबा का शुरू से ही चला, स्वाहा क्या करना था, वो अपनी बुराइयां विकार, क्योंकि वो सतो प्रधान संस्कार बाबा में जैसे आते गए वो पवित्रता का वो अंत पूरा करके बाबा जैसे आद में जा रहा था। तो आद के संस्कार माना सतो प्रधान संस्कार, नई दुनिया के संस्कार, नई दुनिया कैसी होगी, क्या होगा, उसमें हम आत्माओं का क्या स्टेज होती है, वो बाबा को सब साक्षात्कार होता था। इसलिए बाबा कहते थे जो कुछ पुराना है कलयुगी है उसको समर्पण मना स्वाह करना है। वो करने के कारण वो बाबा ने इसका नाम यज्ञ कराया है, यज्ञ नाम इसलिए आया स्वाहा। सवाल का जवाब मिल गया
जी,
मैं समझती हूँ आपको संतुष्टता आ गई होगी।
सबको मिला जवाब जी। दादी जी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वाहा किया तो नाम पड़ गया यज्ञ। तो हम सबने स्वाहा किया, सबने स्वाहा किया ब्रह्मा बाबा जैसे।
तक अभी तक आप देख रहे हैं उसमें से स्वाहा तो किया कईयों ने, परंतु बीच बीच में वो फिर रफू चक्कर भी हो गए। जो प्रख्यात है आश्चर्य रस सुनती कथंती वर्णन करंती फिर भगंती, वो हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा। तो कैसे कैसे आते हैं, सुनते हैं, वर्णन भी करते हैं, बनते भी हैं, फिर भी संग के रंग में आकर के नभु चक्कर भी होते। तो ऐसे भी देखा।
अभी मैं गीता दीदी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि बाबा ने जब ये यज्ञ रचा तो यज्ञ के कुछ नियम भी होते हैं, तो जैसे आप सबको मालूम है कि बाबा के इस यज्ञ का सबसे पहला नियम जो कल बाबा ने मुरली में भी कहा कि बाबा ने पैदा होते ही जन्म लेते ही ब्राह्मणों को वरदान दिया योगी भव पवित्र भव। बाबा ने ये धारणा शुरू से ही यज्ञ की बनाई और आज तक भी चाहे ये बाबा का यज्ञ पूरे विदेश में 137 कंट्रीज में भी चला गया। और मुझे याद है कि हम इतिहास में सुनते हैं कि जब विदेश में सेवा शुरू हुई तो उस समय ये प्रश्न पूछा, सोच में आया कि क्या विदेश में भी इस धारणा के लिए बताया जाए। तो बाबा ने कहा अवश्य, जो बाबा के बच्चे होंगे, जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे, उनको ये धारणा बहुत अच्छी लगेगी। तो बाबा हमेशा से आज तक, आदि से अब तक, यज्ञ का जो फाउंडेशन है पवित्रता की धारणा। तो मैं गीता दीदी से जानना चाहूंगी कि बाबा इतना पवित्रता की धारणा के लिए क्यों, उसकी क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, उसके ऊपर दीदी बताएं।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले वरदान ये दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। अगर हम योगी बनना चाहते हैं तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। और बाबा ने ये नियम इसलिए बनाया क्योंकि बाबा सुनाते थे कि बच्चे किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। और पवित्रता ये नहीं कि घर बार छोड़ के हम जंगल में चले जाएं, अकेले अकेले रहें। बाबा ने शुरू से हमको बताया कि घर गृहस्थ में रह के, इकट्ठे रह के तुमको पवित्र बनना है। और उस पवित्रता के आधार से ही हम अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए जब मैं इस ज्ञान में आई तो हम भी अपनी गृहस्थी लाइफ में थे। और गृहस्थी लाइफ में हमको सबसे पहले पहले जब ये धारणा बताई गई तो मैं और मेरे युगल दोनों ही चलते रहे, साथ साथ ही चले। इसलिए इस बात में कोई मुझे मुश्किल नहीं आई। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये सवाल जरूर आया शुरू शुरू में कि कैसे ये पवित्रता की धारणा हो सकती है। तो बाबा ने हमको पवित्र बनने की बड़ी सहज युक्ति बता दी कि बच्चे तुम सब आत्मा हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। जब हमने ये बात सुनी तो मुझे तो पवित्रता की धारणा बड़ी सहज लगी, मुश्किल नहीं लगी। हम दोनों को ही पवित्र बनना और योगी बनना जैसे बाबा ने शुरू से वरदान दे दिया। और सबसे बड़ी बात, जब हम इस ज्ञान में आए तो बंधन में थे और फिर बंधन मुक्त भी तब बने जितना जितना हम योगी बने और पवित्रता की धारणा की। तो हमने देखा जीवन में स्वयं में भी शांति और सारे घर के अंदर भी शांति, जो हमारे साथी थे, संबंधी थे, उनमें भी शांति फैलने लगी। तो मुझे लगा कि पवित्र बनना, सुनते थे कि देवताएं संपूर्ण पवित्र रहते हैं लेकिन ये कभी ख्याल नहीं आता था कि कैसे पवित्र बने। तो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता, और पवित्रता के साथ साथ सत्यता, और सत्यता के साथ हमारे अंदर निश्चय, और निश्चय के साथ हमारे अंदर ज्ञान की पूरी फाउंडेशन होगी। जैसे कहते हैं ना, किसी भी मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान हिलता नहीं है, आंधी आए तूफान आए। तो ये पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार भी है, हमारी प्रॉपर्टी भी है, हमारा फाउंडेशन भी है। और मैं अपने जीवन में अनुभव करती हूँ जितनी हमारे पवित्रता आती है उतनी हमें निर्भयता भी आती है। पहले हम लोगों से बहुत डरते थे, किसी को नहीं बताते थे हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, झूठ बोलते थे क्योंकि डर लगता था तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हमने पवित्रता की धारणा की तो मैं अपने जीवन में ये अनुभव करने लगी कि हम निडर होते गए, निर्भय होते गए, और अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मिक विश्वास बढ़ता गया, जिसे लगा कि ये पवित्र रहना जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा ने ये फाउंडेशन बनाई है, और इसके बिना हम न योगी बन सकते हैं, न ज्ञानी बन सकते हैं, न हम अपने जीवन में किसी धारणा को कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत सुंदर, आप सब एंजॉय कर रहे हैं। दादी,
मैं दोबारा बताऊं?
हाँ दादी,
तो इनके क्यों ये आया, इनका परिवार बहुत बड़ा था। हमारे पास इसकी एक ननंद कराची में सत्संग में चली, वो चली तो उनका पति भी चला, परंतु जब यज्ञ में हम आए
तो वो दोनों आए थे, लेकिन दोनों में से इनके परिवार ने जब ही देखा तो ये तो सब समझ संन्यास करते हैं, ये छोड़ देते हैं ग्रस्त रहना, तो इनों के ऊपर बहुत वो आया बंधन, तो तुमको नहीं जाना देंगे, ये करेंगे। परंतु फिर वो जो थी इसकी ननद, वो बहुत पक्की थी, उसका जो पति था वो पूरा नहीं था, थोड़ा कच्चा था। तो यज्ञ में जब ये चले तो बाबा का तो परफेक्टता के ऊपर पूरा होता था, परंतु उसको क्या था, उनकी एक सिगरेट की आदत नहीं छूटी, तो बताया नहीं उस वो अपने आप अपने वाइफ को छोड़ करके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कितने उसको ढूंढा किया, परंतु उसने कहा मैं नहीं चल सकता वो, और वो जाके सन्यासी बना, सन्यास किया, परंतु बीवी नहीं छोड़ी। परंतु इनकी ननंद जो थी वो पक्की थी, जिस कारण उसने पूरे परिवार को पूरा संभाला।
दादी
हाँ,
हम लोग शुरू से तीन शब्द सुनते हैं, तीन से भी ज्यादा,
हाँ।
जैसे ये बाबा कहता है यज्ञ, दूसरा बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी है, तीसरा बाबा कहते हैं ये परिवार है, और चौथा दादी आजकल नया जो सुनते हैं वो हमको प्रिय तो नहीं लगता, लेकिन आश्रम बोलते हैं,
हाँ।
तो आप सब में अंतर बताएंगे दादी, यज्ञ से क्या अर्थ है, यूनिवर्सिटी से क्या अर्थ है, और हमारा ये दैवी परिवार है उससे क्या अर्थ है, और आश्रम से क्या भाव है। आश्रम तो हमको दादी पसंद नहीं आता, लेकिन बाबा ने तीन शब्द यूज किए हैं, तो उन तीनों का अलग अलग अर्थ और क्या रहस्य है, क्यों रखा।
कारण ये है, ये जो आत्मा है जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, वो आत्मा ऐसी आत्मा है जिसके लिए दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं, वो बाप भी है और फिर शिक्षक भी था और सतगुरु भी था, तो इस कारण उनके साथ सर्व रिलेशन परमात्मा ने हमारे को साकार में प्रैक्टिकल में दिखलाया। तो जब वो बाप का पार्ट बजाता था तो माना पिता है, हम उनके बालक हैं, तो फैमिली बन जाती है। फिर वो शिक्षक भी है परमात्मा, तो वो शिक्षक का पार्ट जब उनके द्वारा चलता था, ज्ञान का वर्णन चलता था, और वो ज्ञान इतना गुह्य था, तीन कालों का, तीन लोकों का, और तीन स्वरूपों का, और तीन स्टेजेस का, ये सारा ज्ञान उनके आगे जब जब सुनते गए तो यूनिवर्सिटी का नाम पड़ गया। फिर जब ही पवित्रता का आया, योग का आया, आत्मा और परमात्मा का संबंध का आया, सतगुरु का आया, तो सतगुरु के पास में बजाने के कारण इसको आश्रम भी कहा गया, क्योंकि पवित्रता है। तो आश्रम सभी नाम आया, यूनिवर्सिटी ज्ञान के कारण से आया, और परवश भावना के कारण से वो बाप भी हुआ, तो रिलेशन भी रहा। तो रिलेशन के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, मैं तो कहेंगी बहुत और भी संबंध है जो आपने मेरे से नहीं पूछा है, परंतु मैं आपको बताएंगी।
दादी आपने यज्ञ भी बताना, यज्ञ क्यों कहते हैं।
तो ये नाम इसलिए पढ़ता गया, आश्रम माना, यूनिवर्सिटी नाम, और बाप का रिलेशन का नाम।
दादी कौन सा रिलेशन जो हमने नहीं पूछा।
मैं तो कहती हूँ हमने प्रैक्टिकल में देखा,
दिल का हाल दे देते हैं वो फ्रेंड्स, तो फ्रेंडशिप भी था वो बाबा बने उम्र में कितना बड़ा भारी था, परंतु क्योंकि उनके अंदर कोई हैंडल करने वाला वो परमपिता परमात्मा था, इस कारण उनके रूप में सर्व संबंध हम देखते थे। तो बच्चों के टाइम बच्चा हो जाता था, बड़े के टाइम बड़ा हो जाता था, और सब रूपों में हमारे को फीलिंग ऐसा दिया जो हमारे को न आश्रम बारी लगा, न यूनिवर्सिटी बारी लगी, न रिलेशन बारी लगा, हम इजी हो करके बाबा के साथ रहते।
दादी जी, जैसे आशा दीदी यज्ञ के लिए कह रही हैं और बाबा,
आपको समझ ये शब्द आया?
समझ आया, दादी को हाथ हिला के बताइए दादी जी को। दादी जी सब
आप सभी संतुष्ट है तो हाथ हिलाओ।
संतुष्ट है दादी? दादी जी सब संतुष्ट हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। दादी जी, जैसा हम आपके अंदर यज्ञ के प्रति प्यार देखते हैं, जैसे हम देखते हैं दादियों के श्वासों में बस यज्ञ यज्ञ सेवा बाबा, इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसको बाबा कहता है यज्ञ स्नेही बनो, तो दादी हम सब भी आप लोगों का इतना प्यार यज्ञ से कैसे हो गया, जो हर पल बस यज्ञ की सेवा और कुछ नजर नहीं आया, वो कैसे यज्ञ स्नेही जिसको बाबा कहता?
हमने बाबा का जो पालना देखी और हमारे साथ जो व्यवहार देखा, उनका त्याग तपस्या सेवा और हमारे साथ जो प्यार का व्यवहार था, कहते प्यार एक ऐसी चीज है जो सब निछावर करने के लिए तैयार होता है। तो मैं अनुभव अपना बताऊं तो मुझे जो आज तक यज्ञ के लिए प्यार है वो बाबा का प्यार पाने के कारण से मैं ऐसे हो गई। मैं यज्ञ बाबा को देखा, बाबा कितना हमको प्यार करता है, हमको कैसी रिटर्न देना चाहिए, हमने अभी नहीं दिया है, रिटर्न देना ही है, ऐसा सदा रहना है। तो बाबा के तरह जो बाबा ने प्यार दिया है वो प्यार हमको सबको देना है, ये मेरे मन में संकल्प है, इच्छा है, अंदर उमंग है, इस कारण मैं ये करती हूँ।
दादी जी ने जैसे बताया कि दादी जी का कितना यज्ञ से और बाबा से प्यार है, तो हम सबका है, सबका है। दादी जी को हाथ हिला कि दादी जी हम भी आपकी टीम में हैं, हम सबका भी आपसे उतना यज्ञ से उतना ही प्यार है, सभी का है ना यज्ञ से प्यार?
प्यार है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो जरूर करो, नहीं तो बाबा से पूरा वरदान नहीं मिल सकता।
दादी जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि यज्ञ से प्यार करेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा ना? अभी जैसे दादी जी ने शुरू में भी बोला कि बहुत से बच्चे रफू चक्कर हो गए, हम देखते हैं बाबा भी कहता है आश्चर्य व सुनंती और फिर भागंती हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा निश्चय का जो फाउंडेशन है ऐसे बच्चों का हिल जाता है। तो मैं गीता दीदी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या होता है, बाबा कहता है माया दुस्तर है, लेकिन हमारा साथी भी तो इतना बाप सर्वशक्तिवान बाप है, लेकिन निश्चय का फाउंडेशन हमारा खिले नहीं, माया हिल जाए हम नहीं हिल गए, तो उसके ऊपर गीता दीदी जी आप हमको अपना अनुभव या प्रेरणा दें।
मैं समझती हूँ कि जो भागंती होते हैं उसके दो तीन कारण जो मैं जीवन में अनुभव करती हूँ कईयों से, और बाबा के मुरली में भी हम सुनते रहते हैं, अहो सुनंती कथंती पशंती भागवंती और माया का बनंती, बाबा नए नए स्लोगन सुनाता है। तो प्रैक्टिकल आप देखो, बाबा के ज्ञान में जब हम आते हैं तो हमको निश्चय चाहिए। अगर आप सबसे मैं पूछूंगी आप सबको निश्चय है, कहेंगे है निश्चय, सब हाथ हिला के कहेंगे निश्चय है, कितना निश्चय है? 100% निश्चय है। निश्चय जो होना चाहिए वो फिर पक्का निश्चय, कच्चा निश्चय नहीं। और निश्चय है तो उसकी निशानी है। अगर हमको निश्चय है तो एक तो नशा होना चाहिए, दूसरा निश्चय है तो बाबा कहता निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान हमारा साथी, हमको क्या चिंता। दूसरा तीसरा निश्चय है तो हमको निश्चित है कि जो नामा में है वो अनादि अविनाशी बना बनाया है। अगर हमको नशा नहीं है, कभी ठंडा है, कभी देखो सोडा वाटर हो जाता है, कभी नशा रहता ही नहीं है, तो कभी कभी बाबा कहता है नशा कभी बच्चों का उतर जाता है, लेकिन हमारा नशा सदा कायम रहे, ये हमारे पक्के निश्चय की निशानी है। और निश्चय ऐसा हो कि कुछ भी हो जाए हम डावान डोल नहीं होंगे। लेकिन जो भागंती हो जाते हैं उनके मैंने बताया दो तीन कारण। एक तो जो संशय बुद्धि होते हैं वो भागंती होते हैं, बाबा कहते ना संशय बुद्धि विनशयंती। और संशय भी किसमें आता है, किसमें संशय आता है? चार बातों में निश्चय चाहिए, अपने में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। अब प्रैक्टिकल देखो, शिव बाबा में निश्चय कम नहीं होता है, लेकिन दैवी परिवार में किसी की अवगुण देख लिया, कोई कमी पेशी देख ली, तो कहते हैं परिवार में भी ऐसे होता है, दैवी परिवार ब्राह्मणों में भी ऐसे होता है। तो दैवी परिवार के किसी न किसी महारथी या कोई बहुत पुराना भाई देखते हैं, उसकी कोई कमी पेशी देख ली तो संशय बुद्धि हो गए। दूसरा बाबा कहता है ड्रामा की कोई ऐसी सीन आई सामने, और ड्रामा में समझो बाबा ने हमको एक बात कह दी और वो ड्रामा में हमारी बात उलट गई, ड्रामा नहीं उलट गया लेकिन ड्रामा में क्या होना हमको तो नहीं मालूम है, अचानक कोई चीज हमारे सामने आ गई, फिर कहते हैं नहीं बाबा तो ऐसे कहता था, ड्रामा में फिर ऐसे क्यों हो गया। लेकिन हमको ये निश्चय है कि जो हो रहा है आज दिन तक जो हुआ है ये निश्चय बना बनाया हमारा ड्रामा बना बनाया है, इसमें हम क्यों डावाडोल होते हैं। तो इसलिए। और तीसरी बात, संग दोष में आके कहीं भागंती होते हैं। हमने देखा अच्छे अच्छे बच्चे जिनको हम क्लास का मॉनिटर समझते हैं, जिसको हम महावीर और महारथी का टाइटल देते हैं, आज वो भी संग दोष में आ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को संग बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए हमारे नियमों में संग दोष से बच के रहो, अन्न दोष से बच के रहो, बाबा ने हमको पहले से ही बता दिया है, या तो संग दोष है या तो अन्न दोष है। लेकिन संग दोष में आए, किसी ने कोई यज्ञ की ऐसी बात सुना दी, कोई आगे पीछे की इधर उधर की बात सुना दी, फिर कहते अच्छा यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता है, इसका मतलब हमको अपने यज्ञ के लिए जो अभी अभी दादी सुना रही थी तो उसमें हम संशय बुद्धि हो गए। इसीलिए हमको कभी कभी उस संग दोष से हमेशा, मैं तो हमेशा ब्राह्मणों को कहती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण हम पवित्र है, पवित्र के ऊपर जल्दी असर आता है, जैसे सफेद कपड़े के ऊपर दाग पड़ेगा तो दिखेगा ना, ऐसे हम आत्मा प्योर बन रही है तो हमारे ऊपर अच्छे संग का असर आना चाहिए, लेकिन बुरे संग का असर नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा भी कई बार कहता है बच्चे संग बचा के करो, जैसा संग वैसा रंग। इसी संग दोष के कारण भी कहीं भागंती होते हैं। तो इसलिए यही कारण मैंने जो जीवन में देखे हैं, अनुभव किए हैं, तो इसके लिए हम निश्चय बुद्धि विजयंती अगर सदा रहना चाहते हैं तो चारों बातों का निश्चय पक्का हो तो सदा हमारी विजय होगी। ओम शांति।
दादी बताना चाहते
हैं? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बात ये बिल्कुल राइट है, संग मैंने शुरू से लेकर देखा जो भी भागंती हुए है वो सब संग के कारण थे। और संग क्यों आता है? दोष देखने के कारण। दोष क्यों आता है? देखने आते हैं ज्ञान के, ड्रामा की कमी होने के कारण। हमारे में ड्रामा जो है, ड्रामा की है। और दूसरा जो बाबा ने कल परसों के मुरली में भी कहा, तो ये राजधानी है, साथ साथ सब प्रकार के यहाँ से ही ब्राह्मणों से ही बनेंगे, राजा भी ब्राह्मण बनेंगे, प्रजा भी ब्राह्मण बनेंगे, दास दासी भी ब्राह्मणों से बनेगा तो प्रजा भी ब्राह्मणों से बनेंगे। तो ये सब समझने से फिर हमारे को संचय बुद्धि होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर हम इन चारों बातों को पक्का देखेंगे तो संचय बुद्धि नहीं हो सकती। ओम शांति।
एक मन में आ रहा है कि हमारे बीच में आशा दीदी बैठी हैं, तो एक प्रश्न मैं आशा दीदी जी से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि दो रतन है यहाँ, एक आदि रतन और एक आदि सेवा रतन। तो गीता दीदी और आशा दीदी वो रतन है जो सेवा में शुरू से आदि से जिन्होंने यज्ञ को यहाँ तक लेकर आया, इतना हड्डी सेवा लगा करके।
आशा से भी पूछ सकते हैं
दादी, पूछू ना आशा दीदी से प्रश्न?
मैंने पूछो
दीदी, मेरे को प्रश्न आता कि बाबा मुरली में श्रीमत देते, तो श्रीमत में कभी बाबा कहते बच्चे मेरी राय है तुमको, कभी बाबा कहता बच्चे मैं बच्चों को सावधान करता हूँ, और कभी बाबा एकदम धर्मराज बनकर कहता ये मेरा फरमान है, ये मेरा ऑर्डिनेंस है। तो इन तीनों को पालन ना करने पे कॉन्सिक्वेंसेस, माना अगर राय नहीं मानी तो क्या नुकसान होगा, सावधानी नहीं मानी, और अगर फरमान नहीं माना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस माना उसका क्या नुकसान होगा, वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि बाबा अलग अलग शब्द बोलता है।
बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने प्रश्न का कि श्रीमत माना फाइनल मत है, उसके ऊपर और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। श्रीमत माना श्रीमत, जो हमको हर हाल में फॉलो करना ही है, और अगर श्रीमत का पालन करते रहते हैं तो ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहते हैं, और श्रीमत से अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाँ बाबा ने कहा तो है लेकिन उसमें औरों की मत को मिक्स कर लिया, कुछ अपनी मन मत मिक्स कर लिया। उदाहरण के रूप से बाबा ब्रेड का जब मिसाल देते हैं, वो आर्मी वालों के लिए देते हैं कि जिनको कोई भी और मार्जिन नहीं है, तो बाबा कहता है चलो मजबूरी में ब्रेड अगर खाई तो कोई बात नहीं। उसी दिन आप देखेंगे क्लास में कई भाई बहन आपके पास आते हैं और कहते हैं अच्छा आज तो बाबा ने ब्रेड खाने की छुट्टी दे दी, तो उन्होंने आधी मुरली की आधी पॉइंट को देखा, ये नहीं देखा कि बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और किसको कहा। तो ये चीज हम लोगों को समझ में लेनी होगी कि जब बाबा श्रीमत देता है तो श्रीमत से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो बाबा की राय है उसमें बाबा बच्चों को मार्जिन देता है कि ये मेरी राय ये है, बाकी आप जैसा ठीक समझो। तो निश्चय बुद्धि होने के नाते से मैं सोचती हूँ राय को भी हमको बाबा भले निर्माण होकर के कह रहे हैं लेकिन हमको राय को भी अपने लिए श्रीमत ही समझना चाहिए। राय को हम यूं ना समझें, अगर बाबा ने राय दी है वो तो भगवान है ना, और भगवान हमारे तीनों कालों को जानता है, मेरी जन्म पत्री को जानता है, बाबा की राय मेरे लिए फरमान ही है, ऐसी भावना हमारी रहनी चाहिए। तीसरा, कहा कि मैं सावधानी देता हूँ बाबा, जब कभी हम बच्चों की थोड़ी नटखटपन की एक्टिविटी देखते हैं तो बाबा मुरली के द्वारा सावधान करते हैं। उदाहरण के रूप से कभी कभी हम मुरली मिस कर लेते हैं, एक छोटा सा मिसाल देती हूँ, मिस कर लेते हैं। अगर मैं क्लास में पूछूं ऐसे कितने हैं जिन्होंने आज दिन तक जब से जन्म लिया एक भी मुरली मिस नहीं की, वो हाथ तो खड़ा करें, देखिए कितने थोड़े हैं। दादी बहुत बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, बाबा पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और मुरली मिस करने पर क्या होता है वो भी बाबा बताते हैं। तो मैंने बाबा सावधान कर देते हैं, बच्चे अगर तुम ऐसा करोगे तो ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आज के मुरली रंग और राव, राव पढ़ाई से बन सकते हो, रंग पालन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो रंग बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कोई धर्मराज के रूप से, ऐसे कड़े लॉ के रूप से मुरली में भले नहीं कहता है, बाबा का इतना कहना ही पर्याप्त होता है। बच्चे, इस चीज का नतीजा ये होगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़ी सावधानी है, उसको हमें उस रूप से ही लेना चाहिए। और चौथा आपने कहा फरमान, फरमान जो मुझे तुरंत पालन करना है, बाबा के मुख से निकला और मुझे करना है, उसको हम कहते फरमान, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जिस समय जो फरमान करता है उस समय उस वक्त के अनुसार मेरे लिए वही अप्रोप्रिएट होता है और उसको करने में मेरा भला होता है, इसलिए बाबा कहता है ये मैं फरमान करता हूँ। तो मैं तो इसको ऐसा अंडरस्टैंड करती हूँ, बाकी हमारी आदरणीय दादी जी इसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे।
मैं बताती हूँ, बोलो। बात ये है कि बाबा केवल हम थोड़े बच्चों को नहीं देखते हैं, बाबा दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके आगे सारी दुनिया की आत्माएं हैं, और किन आत्माओं को वो बाबा कैसे कहते हैं वो बाबा की बड़ी वंडरफुल उनकी अपनी हैंडलिंग है, किनको प्यार से किसको आर से, आर प्यार मार सब बाबा के पास है, क्यों कि बाबा जानते हैं हर एक आत्मा की कर्म कहानी, उनके सारे जीवन को बाबा जानता है। अगर हमारे को ये निश्चय है तो हम समझे ये मेरे लिए क्या मार है, आर है, प्यार है या क्या है, मेरे लिए कैसी है, मुझे ऐसा लगेगा, मुझे ये नहीं लगेगा बाबा ने ये ऐसा क्यों कहा, ऐसे इधर मेरे को नहीं लगेगा, क्यों कि मैं जाता हो करके तो मेरा बाबा कौन है, कैसा है, क्या क्या जानता है, ये किनके लिए बाबा बोल रहा है, तो मैं निश्चिंत रहेंगी। तो ये बाबा के हर एक आत्मा के प्रति अपने अपने डायरेक्शन होते हैं, मेरे लिए नहीं है मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं प्यार लू, मैं आर लू, मैं मार लू, ये मेरे ऊपर है, जैसी मैं होंगी मुझे बाबा का वो फरमान लगेगा, राय लगेगी, श्रीमत लगेगी, ये सब होता है। हर एक आत्मा समझेंगे मुझे बाबा ने ऐसे कहा, मैं समझेगी बाबा ने प्यार किया, और वो समझेंगे बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्योंकि उस आत्मा की स्टेज अपनी है, उसके लिए बाबा ने ये कहा होगा, मेरे लिए नहीं कहा होगा, मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो ये है बाबा की रांझू रमजबाज, वो सर्व कर्म के कर्मों के गहन गति को जान करके बाबा बोली में सब प्रकार से समय प्रति समय कहते हैं, और जो जिसको है वो मिलेगा, और वो करे न करे वो उनके ऊपर, मैं ये समझती हूँ।
बहुत सुंदर, कितने अनुभव युक्त बातें हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि कई बार हम मुरली सुनते हैं तो बाबा जब राय कहता है, सावधानी कहता है, तो हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो जिस दिन हम देखते हैं कि जिस दिन बाबा थोड़ा स्ट्रांगली बोलता है कि बच्चे ये फरमान है तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन आशा दीदी ने और दादी जी ने कितना क्लियर किया कि कि बाबा की राय को भी हमको साधारण नहीं लेना, क्योंकि वो राय देने वाला कौन है ना। तो इसीलिए कभी भी बाबा राय कहे, सावधानी कहे, उसको हमको उतना ही सीरियसली लेना है। गीता दीदी, आप इस पे कुछ अपना बोलना चाहेंगे?
मैं ये समझती हूँ, बाबा कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, घर में भी आप देखो बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप बच्चों को राय देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं तुमको ये करना ही है। तो अगर आप अपने को बड़ा समझते हो तो राय समझते हो, अगर अपने को छोटा बच्चा समझते हो तो बाबा की श्रीमत या फरमान समझो। मैं ये समझती हूँ राय किसको दी जाती है, जो आप देखो जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप कहते हैं मैं बच्चों से राय लूंगा। आजकल जिससे भी पूछो ना, भाई मधुबन चलेंगे, कहते हैं बहन जी मैं अपने बच्चों से राय करूंगा। तो मैं हैरान होती हूँ, बाप बच्चों से राय करता है, इसका वो कहेगा तो वो जाएगा, इसका मतलब बच्चों से राय लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा बड़ा होके बाप को राय देता है। तो हम राय वाले बच्चे नहीं है, हमको बाबा राय दे, हम छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं ना आप सभी? नहीं है आप बच्चे हैं? नहीं है कि कौन से बच्चे? दादी कहलाती है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, कल बोल रही थी। तो फिर हम बाबा के मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो हम तो बाबा का फरमान पालन करते हैं और श्रीमत को पालन करते हैं, तो श्रेष्ठ बनते हैं। राय नहीं, राय बलि जिसको माननी है मानो, लेकिन राय तो बाबा सबको, जैसा व्यक्ति होगा जैसा बच्चा होगा बाबा राय देता है।
तो बहुत सुंदर दीदी ने भी हमको आंसर दिया कि किस तरह से आज बच्चे और माँ बाप के संबंध में राय का भी एक संबंध जैसे बन जाता है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वैसे तो बाबा कहता है कि यहाँ अंधविश्वास नहीं है, लेकिन अपने जीवन का अनुभव है, बाबा की हर बात को हमने आंख बंद करके माना है, क्योंकि जब बाबा को पर निश्चय हो गया तो बाबा की हर बात पर आंख बंद करके निश्चय करे कि जो बाबा कह रहा है उसमें हमारा ही कल्याण है। अब दादी जी, बाबा हमेशा कहता है बच्चे वारिस बनो, वारिस बनो, बाबा को वारिस बच्चे बहुत पसंद है। और जब सेवा की भी बात आती है तो बाबा कई बार प्रश्न पूछता है, बच्चे वारिस बनाए, कितने वारिस बनाए, प्रजा बनाना तो आसान लेकिन बाबा को वारिस चाहिए। तो दादी जी, बाबा वारिस किसको कहता है, वारिस क्वालिटी बाबा को बहुत पसंद,
वारिस कैसे बनाए
और कैसे बनाए वारिस बच्चे?
पहले वारिस क्वालिटी बताओ।
पहले दादी जी, वारिस क्वालिटी क्या है और फिर उसके बाद?
आप सब वारिस बैठे हो, वारिस बनना चाहते हो, वारिस बनना चाहते हो, आपका नाम वारिस के लिस्ट में आए। अच्छा, कुछ बहनें नहीं चाहती है शायद, वारिस के लिस्ट में आए पीछे वाले सभी वारिस चाहते हैं। अच्छा, अभी सुनो दादी क्या कहती है।
वारिस बनना ही कहते हैं हमेशा, कोई भी कहते हैं ज्ञान में भी, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहते हैं वो पोतरों में ही पटपट्य हो जाता है। तो वारिस बना, जब से हमारा जन्म हुआ तो जन्म लेते ही ये मेरा अपना है, अपनापन आना वारिस का काम है। ये बाबा का है, ये बहनों का है, ये पुराने वालों का है, ये नयों वालों का है, ये सब कुछ नहीं देखेगा अपना। अगर किसी की कमी भी देखेगा तो मेरी अपनी बहन है जिसकी कमी है, ये मेरा अपना भाई है, तो उनका न दोष देखेगा, न उनका पर चिंतन करेगा, न वो करेगा। वारिस की ये क्वालिटी है, किसी का भी पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष नहीं देखेगा, उनको शिक्षा देकर के संभालेगा और उनको बदलेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, ये नहीं फेंक के छोड़ देगा, ये तो ऐसा है ये नहीं। वारिस को इस अपने यज्ञ से, चाहे छोटी भी कोई बात है उसको अपनी होकर के लगेगी, ये देखेंगे बने देखेंगे हमारा क्या काम है, ये होता है रहता है, ये इनके लिए है हमारे लिए नहीं है, तो वो वारिस नहीं है। यज्ञ का कुछ भी कार्य है वो मेरे लिए है, मुझे उनमें पाठ देना है, ये वारस की निशानी। मैं ये समझती हूँ अपने पद की फीलिंग देना ये है वारस की क्वालिटी। अगर अपना पद नहीं है तो वारस नहीं है।
दादी जी और वारिस कैसे बनाएंगे
है? बोलो
कैसे बने?
हाँ दादी जी, वारिस क्वालिटी आत्माएं कैसे बनाएं?
ये ऐसे कहने की ज्ञान की जरूरत है। जो ज्ञान सुनते हैं, बोलन ज्ञान सुनते हैं, उसको जितना जितना मनन चिंतन करके सो के ऊपर लगाएगा तब वारिस बनेगा। जो अगर सुनते बाबा ने ये फलाने के लिए कहा होगा, ये इसके लिए कहा होगा, ये इसके लिए कहा होगा, ये बाबा ने कहा है, ये निराकांक्ष बाबा ने कहा है, ऐसा ऐसा जो देख रहा है वो वारिस नहीं है। मैं साफ कहूंगी।
गीता दीदी जी आप इस पे
दादी एक बार आपने कहा था
जी
कि वारिस वो जो बाबा को अपना वारिस बनाए, उसका क्या राज?
उसका राज जो है मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। जो मेरा है वो बाबा का है, जो बाबा का है वो मेरा है। जो इस नमूने वो करके रहेगा वो ही वारिस बन सकेगा। अगर मेरा भी मेरा, तेरा भी तेरा, वो वारिस नहीं बन सकता। मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, एक है। ये अलग अलग नहीं है। मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, बाबा मेरे से अलग नहीं है।
आप सबने बाबा को अपना वारिस बनाया? सभी ने बनाया? दादी जी सब हाथ उठा रहे हैं कि हम सबने बाबा को अपना वारिस बनाया है, तो ये वारिस बच्चे हो गए दादी जी?
उसको पता ही नहीं है अभी बाद वो है। ये कहेंगे तभी मैंने कहा मुरली को मनन चिंतन करके वो वर्णन करता है, वो बन सकता है। जिसका मुरली से प्यार नहीं है वो वर्णन नहीं बन सकता।
दीदी आप, मैं समझती हूँ वारिस का मतलब अधिकारी। वारिस मतलब अधिकारी, जैसे बच्चा पैदा होता है कहते हैं ना वारिस आ गया, ने सब कुछ संभालने वाला आ गया, अधिकारी आ गया। तो हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, ये नहीं सिर्फ प्यार के अधिकारी, हर चीज के अधिकारी हैं। जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं होगा, वो कभी भी किसी भी चीज के अधीन होता है तो उसको अधिकार नहीं मिलता। दूसरा जो वारिस बच्चा होता है वो बाप से कभी गिनती नहीं करता। जैसे बच्चा जब बाप के पास होता है या बाप बच्चे के साथ है तो उसकी गिनती नहीं है। हम तो हर बात में गिनती करते हैं, चाहे यज्ञ में करते हैं, चाहे योग करते हैं, चाहे ज्ञान सुनते हैं, तो हमारी जब गिनती होती है अपनों से, अपने बच्चों के साथ आप गिनती नहीं करते हो। जब बाबा को वारिस बनाया तो हम बाबा से क्या गिनती करें? जैसे अभी दादी ने कहा 1300 मेरा, 1300 मेरा, और हमारा स्लोगन क्या होता है? हंसी की बात सुनाऊं? जो तेरा है वो तो मेरा, जो मेरा है वो भी मेरा। हम ऐसे वारिस न बने। जो बाबा का है वो तो हम मेरा करते ही है कि मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो भी मेरा, मेरे को हाथ न लगा। इसीलिए जब हम मेरा मेरा करते हैं या मैं करते हैं तो हम वारिस क्वालिटी नहीं है। वारिस जब हम बनते हैं न मैं न मेरा, ये दोनों शब्द खत्म, तब हम बाबा के वारिस बच्चे बने। और जो बाबा कहे उसके हम, जैसे बच्चे को जो माँ बाप आज्ञा करते हैं उसको पालन करते हैं, तो ऐसे सपूत बच्चे हम बाबा के बने तो मैं समझती हूँ वारिस बन सकते। अब आप भी बोलो।
सार में दादी ने और गीता बहन जी ने बताया, और मैं यही समझती हूँ वारिस माना 100% निश्चय बुद्धि, और अपना तन मन धन समय संकल्प सब बाबा की प्रति अर्पित हो वह वारिस हो सकता है। पढ़ाई से अटूट प्यार, और दैवी परिवार से उतना ही प्यार, क्योंकि बाबा से प्यार माना बाबा के परिवार से भी प्यार। हम सब अपने अपने छोटे छोटे सेंटर्स पर, बहुत अच्छा हमारा परिवार है, हम सब एक हैं, वो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन क्या सच में मुझे बाबा का हर बच्चा अपना भाई, अपनी बहन नजर आता है? संसार के किसी कोने में कहीं भी चले जाएं, क्या वो बाबा का स्थान मुझे इतना ही प्यारा लगता है, या केवल जहां मैं हूं वही स्थान प्यारा है? बाबा की हर वस्तु से क्या मेरा इतना ही प्यार है जैसे जान और जिगर जाती है अपनी चीज के लिए, अपने लौकिक वारिसों के लिए? क्या ऐसी मेरी जान और जिगर बाबा के परिवार, बाबा के घर और सारे बाबा के स्थानों के प्रति है? जहां बाप और बेटे में, जिम्मेवारी में कोई भी अंतर न रह जाए, मैं सोचती हूँ वो वारिस है।
एक बात तो मैं बोलूं।
हाँ जी दादी,
मुझे ये आता है, वारिस का पुरानी दुनिया और पुराने संबंध से ऐसी दिक्कत होगा जैसे कि वो कुछ पुराना जन्म था, नए जन्म में पुराने संबंध में कनेक्शन है, या वो दी जाती है, या उनसे रिलेशन है, तो माना वो वारिस कभी नहीं बन सकता है। मैं ये समझती हूँ, देह के संबंधों में अभी तक पुरानी देह के संबंधों में, पुराने संबंधों में है, तो वो वारिस नहीं है, बाबा का वारिस नहीं बन सकता है।
दादी जी, एक और प्रश्न हमारे सामने आया है
जी।
दादी जी, सेंटर से स्टूडेंट्स पालना लेते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि संगम युग पर जो हमको अलग अलग, कभी एक सेंटर पे गए फिर उसके बाद दूसरे सेंटर पे गए, तो जो हमको सेंटर से पालना इतनी मिलती है, तो उस पालना का कर्ज या रिटर्न हम कैसे दें? जो बाबा के यज्ञ से हमको इतनी पालना मिल रही है, उसका रिटर्न कैसे करें?
रिटर्न कैसे होगा? उन्होंने वो सेवा करो तो बस रिटर्न हो गया ना, जितनी सेवा वो किया है, ली है, उतनी सेवा अपनी कर दो। तन की लिया है तो तन से करो, मन से किया है तो मन से, धन की किया है तो धन से, उनका रिटर्न दे करके पूरा हिस्सा करो। अगर वो ऐसा पूरा नहीं करता है तो वो उनके ऊपर बोझ है।
क्लियर हुआ कि हम जितना भी यज्ञ से लेते हैं, लेकिन उतना ही अगर हमने तन से लिया है तो तन से, मन से लिया है तो मनसा सेवा करें, और अगर हम धन से लेते हैं तो उस तरह से हमें रिटर्न करना है। गीता दीदी, आप इस पे कुछ अपने विचार देना चाहेंगे? दीदी, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं, बस।
तो बहुत सुंदर, हमारे सामने हमारी दादियां और दीदियों ने हमारे को यज्ञ के, जो बाबा की हम मुरली तो रोज सुनते ही हैं, लेकिन उसकी गहराई क्या है, उसका अर्थ क्या है, बाबा क्या चाहता है हमसे, वो अनुभव युक्त बोल हमारे सामने रखे। तो हम सब पुनः गीता दीदी का, रुक्मिणी दादी जी का और आशा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत दादी जी आपका धन्यवाद है। ओम शांति। Thank you.
धन्यवाद।